जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 श्लोक संख्या 19 पर 4 दिसंबर 2016 को NVCC इस्कॉन पुणे में दिया गया।
गोपी जन बाधारी भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा प्रचार में रुचि लेते हो? ध्यान दे कि ये क्या कौन सा महीना है? तो ये श्लोक है 19 चैप्टर 31 सेकंड को ऐसे अध्याय में नारद मुनि प्रचेतस को शिक्षा दे रहे हैं। वह नारद मुनि इस प्रकार से कह रहे हैं, दयाया
समस्त जीवों पर दया करने से ये न किन्न प्रकार से संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग इसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सके। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए पर 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आना है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो हृदय खुशी तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण परा सर्वे न तुतश्चन विद्यति स्वर्गापवर्धनर्गेषु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। भक्त के उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं करती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में है किंतु वे एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती है। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती है।
ओम ज्ञान जय श्री कृष्ण आप से कितने भक्तों ने श्लोक कंठस्थ किया हुआ है सबको प्रयास करना चाहिए इसे कंठस्थ करने प्रयास है। और प्रदेश संस्कृत से भाषण देशा श्लोक उच्चारण नाद मुनि कर रहे हैं। आप सब नाद मुनि से परिचित हो। नाद मुनि बारह में से एक महाजन है। सिंभु नाद शंभु कमर कपिल जन कमेश्वरचित महाज प्रचिन्ह परिषद के प्रसिद्ध है जिन्होंने बहुत गहरी तपस्या की थी। एक मंत्र को उच्चारण किया था जिसकी रचना शिव जी ने की थी। फिर ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया इन्होंने। फिर गृहस्थ आश्रम छोड़कर वापस नारद मुनि जी से मिले दिव्य ज्ञान मांगने के लिए। भक्त जब किसी भक्त को मिलता है तो ये भाव रहता है कि पूछे कैसे हम क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। चौथे स्कंध में आप पृथुमना की कथा पढ़ते हो। पृथुमना शक्त विषय होता है पर जब उन्होंने कुमारस का स्वागत किया उनके चरण धोए तो उनसे पूछा क्या पूछा ये बताइए कि हम कैसे हैं आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर सकते हैं। ये था उनका प्रश्न। हालांकि उनके पास ज्ञान था तो फिर कुमार ने उन्हें शिक्षा दी। इसी प्रकार आप साथ स्कंद में भी पढ़ते हो कि जब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से मिले उनसे उन्होंने पूछा उन्होंने बड़े विनम्रता के भाव से कहा हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कैसे शास्त्र आधारित जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये होना चाहिए हमारा भाव जब हम किसी संत को मिले तो उनसे प्रश्न पूछे। ऐसे कई बार वो मिलते हैं कहते स्वामी जी आशीर्वाद दो तो पूछा जाए आशीर्वाद किस विषय के लिए ध्यान दे उन्नति के लिए नहीं 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 भौतिक सुख के लिए। जब संत मिले वहां प्रश्न होना चाहिए ध्यान उन्नति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो इस अध्याय में नारद मुनि प्रचित शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अनेक श्लोकों के द्वारा यही विषय साबित किया जा रहा है। और ध्यान से देखा जाए पूरे श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक इसी विषय की चर्चा है। व्यासदेव जी ने सारे वैदिक शास्त्रों की रचना की थी और जब भी उन्हें लग रहा था क्योंकि रचना में कुछ कमी रह गई है और विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर तो वहां उनके गुरु नारायण जी पहुंचे। नारायण जी ने कहा कि तुमने रचनाएं तो की है सार को प्रस्तुत भी किया महाभारत में ज्ञानता सूत्र में और केवल शुद्ध भक्ति पर बल नहीं दिया और इसके पश्चात व्यास ने हमें श्रीमद् भगवत का ज्ञान दिया जिसके विषय में कहा गया है सबसे पका हुआ फल जो कि पेड़ की चोटी से आ रहा है परंपरा के द्वारा। तो श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक इसी विषय पर बल दिया जा रहा है कि हमें शुद्ध भक्ति स्वीकार करनी चाहिए और इस अध्याय में नारद मुनि कहते हैं जैसे आप पेड़ के पौधे में पानी डालते हो पूरे पेड़ में उसका प्रभाव फैल जाता है। आपको भूख लगती है तो आपका सारा शरीर कमजोर हो जाता है पर आप भोजन केवल एक ही स्थान में डालते हैं ना काम पेट में और पूरे शरीर में ताकत आ जाती है। तो नारद मुनि ने ये उदाहरण आपने कई बार सुना होगा तो ये उदाहरण नारद मुनि का है जो कि इस अध्याय में प्राप्त होता है। तो नारद मुनि ने प्रचेतस के प्रश्न के उत्तर में प्रचेतस ने कहा आप जो हो सूर्य के समान हो जैसे अंधेरेपन में आप चल रहे हो थोड़ा भय रहता है कोई हमें पकड़ तो नहीं लेगा पर सब सुबह ये प्रकाश सूर्य की किरणों को देखते हो तो भय दूर हो जाता है। अब रोशनी आ रही है अब कोई हमें उठा नहीं लेगा। तो उसी प्रकार प्रचेतस ने कहा आप जो हो सूर्य के समान हो आपके साथ बैठकर हमें केवल दिव्य ज्ञान मिलता है और भय दूर हो जाता है। तो नारद मुनि इस अध्याय में तीन महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं और नारद मुनि ने इस अध्याय में शिक्षा दी है किस प्रकार आप परम भगवान को संतुष्ट कर सकते हो। तुष्यादेशुनादन का अर्थ है संतुष्ट करना आशु का अर्थ है बहुत ही जल्द आजकल बहुत ही जल्दी का जमाना है ना सब चीज हमें इंस्टेंट चाहिए इंस्टेंट चाय इंस्टेंट तो यहां नारद मुनि कह रहे हैं तुष्याद याशु मतलब बहुत ही जल्द। तो एक रूप से देखा जाए नारद मुनि हमें शिक्षा दे रहे हैं कैसे आप तेजी के साथ भगवान को संतुष्ट कर सकते हो। आप भगवान को तेजी के साथ संतुष्ट करना चाहते हो कौन कौन सब ये श्लोक आपके लिए है। यहां नारद मुनि कह रहे हैं किस प्रकार तेजी के साथ आप भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं एक तो कहते हैं सब जीव आत्मा पर दया कीजिए सब ये नहीं कि जैसे कि कई धार्मिक लोग भी कहते हैं मनुष्य योनि को आदर दो पशु को खा खाओ नहीं आदमी कह रहे हैं सब योनियों पर भक्त का इतना उत्तम भाव रहता है कि वो एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। तो पांचवें स्कंद में जब भारत की कथा पढ़ते हो जब भारत मार रोगिणा की पलकी को उठा रहे थे इतने सावधानी से चल रहे थे पहले देखते थे आगे तीन कदम तक कोई चींटी वगैरह तो नहीं है ये है भाषा का भाव। तो नानक मुनि कह रहे हैं सभी बातों पर दया कीजिए और संतुष्ट रहो, जो भी प्राप्त हो भगवान की कृपा से, और इंद्रियों को वश में लाओ। अगर तुम केवल इन तीन चीजों को करोगे तो क्या किसे संतुष्ट कर पाओगे? ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य। भौतिक संसार में हम सब एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। भौतिक स्थिति में पति पत्नी एक दूसरे को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, पर अंत में संतुष्ट नहीं कर पाते, इसलिए इतना तलाक होता है। कई विदेश देशों में रशिया जैसे 80% शादियों का तलाक हो जाता है। 80% भारत में 80% नहीं है, भारत में बढ़ते जा रहे तेजी से। तो आप नौकरी करते हो, प्रयास करें अपने सेठ को संतुष्ट करने का। हम चाहते प्रयास करते हैं कईयों को संतुष्ट करें, परंतु क्या नतीजा होता है? किसी को संतुष्ट कर पाते हैं? लोग कहते हैं थोड़ा ये कमी है, ये कमी है। माँ बाप बच्चों को पालते हैं, बच्चे बड़े बड़े कहते हैं क्या क्या तुमने हमारे। तो ये है मौलिक परम भगवान को आप बड़ी सरलता से संतुष्ट कर सकते हो। तुझ सेवा में आप करोगे आपके साथ रहेगी, तुझ सेवोगे परम भगवान। तो प्रभा जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? प्रभा जी तात्पर्य में कह रहे हैं यहां भगवान नारद मुनि विधियों का वर्णन कर रहे हैं जिसके द्वारा हम भगवान को संतुष्ट कर सको। सबसे पहले क्या संदेश है? दया की भावना। तो दया का अर्थ क्या है? दया के कई साधन हैं। जैसे जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, अगर उनके पास धन हो तो धन कहाँ लगा देते हैं? हॉस्पिटल बनाने में, गरीबों का विवाह करा देने में, इस प्रकार की सेवा है। आपने मान लो उसका हॉस्पिटल बना दिया, उसमें इलाज कर दिया, पर अगर आपने उस व्यक्ति का हृदय को नहीं साफ किया, आपने उसका सहयोग दिया नहीं। तो जिस प्रकार प्रभु जी कह रहे हैं सबसे उत्तम प्रकार का दया है कृष्ण भक्ति का प्रचार। वैष्णव में ये भाव होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि शुद्ध भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं है भगवान को संतुष्ट करने का। श्रवण ये वही व्यर्थ कार्य है। तो इसलिए भक्तों के मन में सदा यही भाव रहता है कि हमें कृष्ण भक्ति का उपदेश देना चाहिए। आप श्री प्रभुपाद जी का उदाहरण देखो, प्रभुपाद जी लगभग 70 साल की आयु में 40 रुपए के साथ बिना किसी जान पहचान के उस देश में पहुंचे जहां बड़ा कठिन है प्रचार करना। तो प्रभुपाद के मन में क्या भाव था? वृंदावन में प्रभुपाद जी बड़े आराम से रह रहे थे, उन्होंने ये नहीं देखा अपना सुख, उन्होंने देखा जीवों का उद्धार कैसे हो। तो ये बड़ा उत्तम भाव है। पर जब हम उत्तम भक्तों के विषय में सुनते हैं तो हमारे में भी ये भावना प्रकट होती है। शास्त्र में अनेक उदाहरण है, जैसे कि सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज की शिक्षा पढ़ते हो। प्रहलाद महाराज भी महाजन है। जब वो माता के घर में थे, नारद मुनि द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, और लाल मान ने क्या कहा, हे भगवान मैं केवल अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करता। कई अध्यात्मवादी हैं जो केवल अपनी मुक्ति की चिंता करते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, मौन व्रत रखते हैं और केवल अपनी मुक्ति का ध्यान करते हैं। पर मेरे मन में क्या है, मैं अकेले मुक्त नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूं कि क्या हो, सबका उधार हो, उसी में मेरी खुशी। तो आप कह सकते हो ये तो प्रहलाद महाराज का भाव है, हम प्रहलाद महाराज की स्थिति में थोड़ी हैं, हम तो बस जीव हैं, माया से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, हमेशा माया से संघर्ष रहता है। सच बात है, हालांकि आप भक्ति कर रहे हो माया आपको खींचते रहती है, मन भटकता रहता है। पर जब हम महान संत के विषय में सुनते हैं तो उस सुनने से ही हमें प्रेरणा मिलती है। और इस श्लोक के तात्पर्य में पापा जी कहते हैं, हर भक्त को घर घर जाना चाहिए भगवद गीता के संदेश के साथ, घर घर जाना चाहिए। तो ये प्रचार की महिमा हमारे शास्त्र में है, जैसे कि भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है, मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय हुआ है ना होगा। यही भाव चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु वैसे तो भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण, राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, किस लिए, पतितों को उद्धार करने के लिए। जैसे गोवर्धन दास ठाकुर कहते हैं, पति भगवान हित अवतारा वो समा पति तो प्रभु न भाई बहाल, आप अवतारे तो रहे हो पतितों को उद्धार करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विषय पर बल दिया। चैतन्य महाप्रभु एक समय दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने जगतपुरी में बहुत समय काटा, सर्वो भट्टाचार्य का उद्धार किया, उसके पश्चात निकले दक्षिण भारत के लिए। दक्षिण भारत की यात्रा जब चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, दूर दूर से लोग आते थे उन्हें देखने के लिए, उनको देखते ही प्रभावित हो जाते थे, वही नाम का उच्चारण। जब वो लौटते थे अपने स्थानों पर, उन्हें देखकर दूसरे भी वही नाम का उच्चारण शुरू कर देते थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, इस प्रकार लगभग पूरी प्रजा दक्षिण भारत में वैष्णव बन गई थी। तो चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण कुर्मा के घर में रह रहे थे। उस कुर्मा ने कहा, मैं अपने घर में निराश हूं, मुझे साथ ले चलो। महाप्रभु ने कहा, मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, हरि नाम करो और हरि नाम की महिमा को प्रचार करो। एक भक्त था जिसका नाम था वासुदेव विप्र, उसे कोढ़ की बीमारी थी, पूरा शरीर पुंछियों से भरा हुआ था और चीटियों से कीड़ों से भरा हुआ था। और ये इतने दयालु थे कि जब कोई चीटी नीचे कीड़ा गिरता था उसे वापस उठाकर जोड़ लेते थे शरीर के साथ। तो वहां से विप्र को जब पता लगा महाप्रभु आए हैं, उन्हें मिलने गए, महाप्रभु चल पड़े थे। महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि वास्तव में प्रभु मुझे मिलने आया है और दुखी है क्योंकि वो मिल नहीं पाया। वहां प्रभु वापस लौटे, वहां प्रभु ने उसे गले लगाया और जैसे गले लगाया सारी कोर की बीमारी तुरंत दूर हो गई। और यही बदसूरत व्यक्ति जिसके शरीर से बदबू आती थी सदा, नौजवान युवक खूबसूरत युवक बन गया। तो वास्तव में प्रभु समझ पाए ये संभव हुआ है चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा के कारण, और उन्होंने उन स्तुतियों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया। सुदामा ब्राह्मण की कथा पढ़ते हो दसवें स्कंद में। सुदामा ब्राह्मण भगवान के बचपन के मित्र थे। जो अपने घर में लौटे उन्होंने क्या देखा, क्या देखा, कुटिया बन गई थी, उनकी पत्नी जो की पटी साड़ी पहन रही थी सजी हुई थी महारानी जैसे। वो समझ गए ये संभव हुआ है उनके मित्र की कृपा के कारण। तो वासुदेव प्रभु ने उन स्तुतियों का उच्चारण किया और इसके पश्चात एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि पहले तो मेरे को मेरा शरीर इतनी बीमारियां थी, कोई मेरे निकट भी नहीं आता था। अगर मैं सड़क के बाएं तरफ चलता था सब दाएं तरफ हो जाते थे। अब आपकी कृपा से मैं खूबसूरत युवक बन गया हूं। मुझे बताइए किस प्रकार विनम्रता का भाव मैं रख सकता हूँ। महाप्रभु ने कहा चैन हरे कृष्णा, दूसरों को हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, गीता भागवत को पढ़ो, इस संदेश का प्रचार करो। इस प्रकार मन मन में हमेशा विनम्रता का भाव रहेगा। तो इस लीला के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ उसी प्रकार इस संसार के सारे भक्तों का उद्धार हुआ है और उन सब का कर्तव्य बनता है क्या कि वो घर घर जाकर क्या करें, प्रचार करें। आपने देखा होगा जो ईसाई लोग हैं क्रिश्चियन मिशनरी, आपको पता हो कैसे प्रचार करते हैं, घर घर जाते हैं बाइबल लेकर। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन जूते मारेगा या कौन दरवाजा खोलेगा। ईसाई लोग घर घर जाते हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने चेतते हुआ प्रभु के संदेश को पढ़ा होगा। वो घर घर जाते हैं बाइबल बांटने में। भारत के उन इलाकों में जैसे हरियाणा पंजाब जहाँ की क्रिश्चियनिटी का कम प्रभाव है, दक्षिण भारत में तो भरा हुआ है, वहां भी अभी उन्होंने चंडीगढ़ जैसे शहर में भी घर घर जाना शुरू कर दिया है बाइबल लेकर। हालांकि उनको पता है कि प्रजा लगभग हिंदू है, जब भी इतना गहरा विश्वास है बाइबल में घर घर जाते हैं बाइबल मान। तो चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव विप्र से कहा घर घर जाकर प्रचार करो। ये भाव उसे भी अनुकूल कर रहे हैं। तो प्रचार की सेवा को सबसे उत्तम सेवा मानी जाती है। आप चैतन्य भागवत में पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन हरिदास और नित्यानंद को बुलाया। हरिदास और नित्यानंद घर घर जाओ, सबको एक संदेश दो, बोलो कृष्ण मानो कृष्ण बोलो कृष्ण। क्या है संदेश, कृपा करके कृष्ण का नाम लो। तो हम बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण, कृष्ण की उपासना करो और कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ, घर घर जाके प्रचार करो। और प्रचार का क्या परिणाम होगा शाम को आके मुझे सूचना दो। जैसे कि रावत जी विजयप्रीति करते भाग जा रहे थे प्रचार के लिए, शाम को जब लौटते थे ब्रह्मा जी पूछते थे सो हाउ इज द प्रीचिंग टुडे, प्रचार कैसे था। और उसी भाव के अनुसार रोज सुबह हमारे मंदिरों में भगवान की आंचल विरा को हम रिपोर्ट देते हैं प्रभुपाद को, कल हमने इतना प्रचार किया उसी आदेश के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास को केवल ये नहीं कहा घर घर जाके प्रचार करो, उन्होंने कहा घर घर जाके प्रचार करो और मुझे आके बाद में बोलो कितना प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु ने रिपोर्ट के लिए भी मांगा। जब चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के साथ बगीचा मार्जनम कर रहे थे तो सारे भक्त गंद या मिट्टी को इकट्ठा कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जाकर देख रहे थे कौन कितना गंद इकट्ठा कर रहा है, अगर कोई कम कर रहा था तो जो ज्यादा कर रहा था जिनमें अच्छी योग्यता थी उनको कहते थे इसे सिखाओ और अच्छी तरह करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार हरिदास और नित्यानंद ने घर घर जाना आरंभ किया। और जो घरों में जाते थे सन्यासी के वस्त्र उन्होंने पहने थे, जो घर जाते थे कई घरों में तो उनका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ, आओ संत महात्मा हमारे घर को पवित्र बनाने आए हो, बैठिए हम क्या कर सकते हैं आपके। वो कहते थे बोलो कृष्ण माधव कृष्ण कृष्ण तुम्हारा प्राण है, कृष्ण तुम्हारा असली लक्ष्य है, कृष्ण तुम्हारा असली धन है। कई घरों में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। तो कई घरों में वो गए लोगों ने दरवाजा भी नहीं खोला, लोगों ने देख लिया ओ महाप्रभु के साथ ही आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकेत आंदोलन शुरू किया था, बोले थे कई ने तो साथ दिया, मुसलमानों ने विरोध किया तो कई हिंदू ब्राह्मणों ने भी विरोध किया, कहा ये भाई अपने हिंदू धर्म की बेइज्जती कर रहा है, नया धर्म इसने पैदा कर दिया है। ब्राह्मण जो थे उनकी आमदन कम हो गई थी, तो नकली धर्म को प्रचार कर रहा है। जब हमारे विदेशी भक्त अमेरिकन भक्त कोई 30 साल पहले इंडोनेशिया में गए प्रचार करने, इंडोनेशिया मुसलमान देश है तो एक समय हिंदू देश था, आज भी वहां रामायण होती है महाभारत होती है, उनकी जो नेशनल एयरलाइन है उसके नाम है गरुड़ एयरलाइन, भारत में जेट एयरवेज वगैरह। तो जब वहां गए थे तो उन्होंने प्रचार किया व्यक्ति बंदे ब्राह्मण गुणों के आधार पर जन्म के आधार पर नहीं, तो कई जो हिंदू ब्राह्मण थे वहां उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सरकार को शिकायत कर दी ये इसको के भाग जो आए हैं वो हिंदू नहीं। तो कई ब्राह्मणों ने चंद काली से शिकायत की इनवाई का हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है। तो मुसलमानों ने कहा अगर हम निमाई को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे। तो कई घर में गए लोगों ने कहा निमाई तो पागल हो गया है और दूसरों को भी पागल बना रहा है और हमें भी पागल बनाने के लिए हिंदुओं को भेज दिया, हमें भी पागल बनाने के लिए नित्यानंद हरिदास को भेज दिया। कई घरों में जब वो जाते थे लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे, क्यों? चैतन्य महाप्रभु जब अपनी दिव्य लीला प्रकट कर रहे थे शिवास आंगन में, सबको सुविधा नहीं थी इसके दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए, केवल चुने हुए भक्तों को। तो कई कहते थे जब हमने प्रयास किया था शिवा संगम में उनका दर्शन लेने के लिए, उन्होंने रोक दिया, हम ही नहीं हमारे घर में नहीं आने देंगे, मिलने पे डेला। कई घर में वो जाते थे, लोग कहते थे ये तो चोर के प्रतिनिधि हैं, आए हैं देखने के लिए हमारे घर में क्या है, फिर बाद में आएंगे चुराने के लिए। जब नित्यानंद हरिदास को ऐसे कहा जाता था तो हंसते थे। तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, जब आप प्रचार के लिए जाते हो, घर घर गीता बांट रहे हो, फैक्ट्रियों में जा रहे हो, अलग स्थानों में जाते हो, कई स्थानों में तो आपका बड़ा अच्छा स्वागत होगा, तो कहेंगे आ गए हो बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो कई स्थानों में लोग क्या कहेंगे, और कोई काम धंधा नहीं है क्या, हर साल आ जाते हैं हमें पागल बना रहे हैं। तो कई लोग आपकी बेइज्जती भी करेंगे, तो हमें सह लेना चाहिए। आगे जो प्रचार के क्षेत्र में जुड़ते हो अनेक प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। प्रहलाद महाराज देखो वो प्रचार कर रहे थे, वो क्या कितना कष्ट भुगतना पड़ा, उनके पिता ने उन्हें पहाड़ की चोटियों से देखा, जेल उन सांपो ने घेरा है प्यारे। तो प्रचार की जो ये सेवा है यह सबसे महत्वपूर्ण सेवा, पर एक रूप से देखा जाए ये सबसे कठिन सेवा भी है, पर सबसे महत्वपूर्ण सेवा। तो हमारे शास्त्र में इस पर बल दिया गया है, तो प्रभुपाद जी ने प्रचार की सेवा के ऊपर बहुत बल दिया। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ से कहा चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने विश्व के महाविद्यालयों को भेजा जिस साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर। भक्ति सिद्धांत जी ने इस विषय पर भी बल दिया और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दे तो क्या करना, क्या करना, ग्रंथ को प्रकाशित करना और भाटना। तो सेवा का नाम क्या था, क्या था इस सेवा का नाम, मृदंगा का मतलब सबसे बहुत बड़ा, साधारण मृदंग की आवाज थोड़ी दूर तक जाती है। एक ग्रंथ को आप पूना में बांटोगे उसका अध्ययन विश्व के दूसरे कोने में हो सकता है। तो भक्ति सिद्धांत जी ने भी इस विषय पर बोल दिया और उन्होंने प्रभुपाद जी को खास आदेश दिया था ग्रंथों को प्रकाशित करो, ग्रंथों को बांटो। तो प्रभुपाद जी ने इस सेवा में बड़ा 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 बल दिया कि भगवान की चिंता रहती है कैसे पति को बता रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर की कुटिया में जाते थे, हरिदास ठाकुर के उनका जन्म हुआ था मुसलमान खाना में, मंदिर प्रवेश नहीं कर पाए जगन्नाथपुरी मंदिर के। ऊपर सनातन गोस्वामी क्योंकि हालांकि उनका जन्म ब्राह्मण खाना में हुआ था, वो जुड़े थे नवाब हुसैन शाह की सेवा में, वो भी अंदर नहीं जा पाए। वहां पर रोज हरिदास के घर कुटिया में जाते थे और उन्हें प्रसाद देते थे। वहां पर वो एक दिन गए हरिदास के पास, वहां पर मैंने कहा हरिदास ये बताओ ये यामनाम नेचर का उद्धार कैसे होगा, ये रहती है भगवान की चिंता, जिसमें माता पिता की चिंता रहती है गुम हुई औलाद को वापस कैसे लाया जाए। तो भगवान ने कहा हाय नाथ ये बताओ कैसे यम वृक्ष में उदाहरण होगा। तो हरिदास ने क्या कहा हाँ राम बालिके राम भाषे लोग हरि का नाम लेंगे अपराधों से रहे इसके द्वारा उनकी मुक्ति हुई। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये है भगवान की इच्छा, भगवान की चिंता है कैसे सब जीवों का उद्धार हो और उनकी इच्छा क्या है उनके भक्त प्रचार करके भक्तों को भेजे। आपने वासुदेव दत्ता की कहानी पढ़ी होगी, वासुदेव दत्ता अत्यंत ही आलू भक्त थे। एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु जी के पास पहुंचे, उनसे कहा आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। वहां भगवान ने कहा मांगो। वासुदेव दत्ता में तो इतने गुण थे, महाप्रभु कहते थे मैं हजारों जीवों से भी सारे गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। तो वासुदेव दत्त ने कहा मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं आप सब पतितों का उद्धार कर दो और जो उनका पापों का परिणाम है वो मुझे भोगने दो। देखो कितने दयालु। भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं अपने भक्तों का पापों का परिणाम दूंगा। वासुदेव दत्त ने नहीं कहा सब जीवात्माओं का, चाहे मुसलमान हो क्रिश्चियन हो कौन हो सबके पापों का परिणाम मैं भुगतने को तैयार। तो ये भाव तो बड़ा उत्तम भाव है, हमारे में वो भाव तो नहीं है सच बोला जाए, पर अगर हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमारे में भी ये भावना होगी। तो प्रभुपाद जी ने भ्रांतों के वचन की सेवा पर बल दिया था। एक ही कारण प्रभुपाद जी चाहते थे कि पतितों का उद्धार हो और प्रभुपाद जी स्वयं पश्चिम देशों से जाने से पहले तो प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड पत्रिका छापना शुरू किया। फिर एक दिन एक सज्जन ने कहा एक लाइब्रेरियन ने स्वामी जी आप एक छोटी छोटी किताबें छाप रहे हो इन लोग पढ़ते हैं और फेंक भी देते हैं, ग्रंथों को क्यों नहीं प्रकाशित करते। फिर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को प्रकाशित किया और प्रभुपाद जी खुद जाते थे बांटने और भागवतम बांटने के लिए प्रभुपाद जी लाइब्रेरी में जाते थे। और जब प्रभुपाद जी विदेश में गए अमेरिका में वहां जाकर भी उन्होंने अपना अनुवाद का कार्य तेजी से निभाया और भक्तों को कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तो जो अमेरिकन शिष्य थे वो चिंता में पड़ गए हमारे गुरु जी कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, हमारा कोई अभ्यास है ही नहीं, हमने कभी किया ही नहीं ऐसा कहानी। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और एक भक्त संकीर्तन करके घर मंदिर लौट रहा था तो उसको पेट्रोल डालना पड़ा गाड़ी में, तो उसने $10 का पेट्रोल डाला और उसने सोचा $10 की बजे मैं कृष्ण को क्यों नहीं बेचूं पेट्रोल पंप के मालिक को। तो उसने कृष्ण को दिखाई, मालिक ने खरीद लिया, भक्तों में उत्साह बढ़ गया। तो एक पेट्रोल पंप वाला किताब खरीद सकता है दूसरे के लिए खरीद सकते और आस्ते आस्ते एक्सपेरिमेंट अभ्यास करते करते भक्त भगवान ने अलग अलग बुद्धि दी और इतनी संख्या में ग्रंथों का वचन हो। तो प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वचन की सेवा पर बहुत बल दिया। प्रभुपाद जी ने कहा आप 2-3 मिनट बात करोगे उसका क्या असर रहेगा, बात करोगे लोग सुनेंगे भूल जाएंगे। तो अगर आप उनको एक ग्रंथ दोगे, एक श्लोक भी वो पढ़ेंगे, एक पन्ना भी पढ़ेंगे, तुम्हें जीवन सुधर सकता है। तो आज आप देखते हो पुणे में भी हजारों भक्त है, कल रात के प्रोग्राम में भी शायद 2000 भक्त होंगे। कितने लोगों ने प्रसाद खाएगा, प्रसाद हम प्रेम के द्वारा पता लग जाना कैसे। तो भक्तों की संख्या बढ़ी है पुणे में, और देखा जाए तो सारे भारत में, सारे विश्व में। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है ग्रंथों का वितरण, ग्रंथों का अध्ययन। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप एक श्लोक भी ध्यान से पढ़ोगे तो आपका जीवन सुधर सकता है। तो गीता जयंती के उपलक्ष असल में अभी जब मैराथन शब्द है इस्कॉन में एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन गया है, ये अंग्रेजी शब्द। वो एक दिन अमेरिकन शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैराथन, व्हाट शुड वी डू विद मैराथन। प्रभुपाद ने कहा लेस स्लीप, लेस ईट, मोर पेशेंस, कम सोना कम खाना और ज्यादा प्रचार करना। तो गीता जयंती के उपलक्ष भारत में हम कह रहे हैं गीता जयंती के उपलक्ष, और अमेरिका में शुरू हुआ था क्रिसमस के उपलक्ष। तो गीता जयंती उपलक्ष हमारे भक्त प्रयास करते हैं क्या अनेक से अनेक मात्रा में ग्रंथों को बांटने के लिए। कई बार हम सोचते हैं जितने जान पहचान है सबके पास हम चले गए, आप किसके पास जाएंगे? आप आश्चर्य हो गए ये देखकर कि अगर प्रयास करोगे भगवान आपको बुद्धि देंगे। भगवान क्या कहते हैं, जो प्रयास करते हैं मुझे संतुष्ट करने के लिए, उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं क्या करता हूँ, दूर कर लेता हूँ। तो ये जो ग्रंथों का वितरण का मैराथन है, ये समाज की सबसे ऊंची सेवा है। आजकल हमारे प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है स्वच्छ भारत, वो पता है ना, 2008 के नए नोट्स में भी वो छोटा सा लिखा हुआ। यहाँ पे नए नोटों को देखो तो स्वच्छ भारत का लिखा हुआ है उसने, लिखा ना। तो मैं भक्तों को कहता हूँ हमारा आंदोलन है स्वच्छ हृदय। हृदय को साफ कैसे करोगे, ये तो बंद मानना। हृदय को साफ करोगे इस दिव्य ज्ञान के द्वारा, और अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में भी कह रहे हैं तो कृष्ण भक्ति की कमी है। प्रभुपाद जी कहते हैं द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम वॉट ऑफ दिस नॉलेज, पूरा विश्व कष्ट में है। देखा जाए समाज का क्लेश बढ़ते जा रहा है, रोज नया क्लेश है कि नहीं। आजकल किसी बैंक के सामने से कुछ लोग क्या देखते हो, रात को हम जा रहे थे कंटोनमेंट, हर बैंक के सामने लाइन थी। वहां एक भक्त है बड़ोद जलंधर में, बैंक मैनेजर है, वो कह रहा था लोग पत्थर फेंकते हैं कई बार, तो उनको पुलिस को बुलाना पड़ता है, क्यों लोग निराश है, उनका पैसा फंसा हुआ है, बैंक में पैसा है नहीं, अपना पैसा भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखा जाए आज एक समस्या हल होती है कल दूसरी समस्या होती है, तो ये है भौतिक जीवन। तो अगर आप लोगों को सुखी बनाना चाहते हो, ये है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति की बहुत कमी है। तो हम सबको बड़े उत्साह से इस सेवा में जुड़ना चाहिए, और हम सब में ये भाव होना चाहिए कि ये एक सेवा की जा रही है पंडितों के उद्धार की है, ये असली समाधि। तो अगर आप प्रचार के कार्य में सफलता चाहते हो तो अच्छी साधना भी बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले जप माला करो अच्छी तरह। जितने ध्यान से जप करोगे शास्त्र को और शास्त्र पढ़ो, प्रचार प्रचार का मतलब है माया के मैदान में सामने आना, युद्ध के मैदान में। और युद्ध के मैदान में आगे सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छी तैयारी होगी तो अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो प्रचार करने जब आप जाते हो माला का जाप करो और थोड़ा गीता या भागवतम पढ़ो, फिर जब आप प्रचार के लिए जाओगे तो आप उत्साहित रहोगे। रूपा गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य कर्म प्रवर्तन भगवान की सेवा उत्साह के साथ कर रहे थे। एक समय ये उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिया था, एक समय मैंने बॉम्बे में बहुत बड़ा बुक स्टोर था फ्लोरा फाउंटेन में, नेशनल बुक हाउस, प्रभा जी का बहुत बड़ा बुक डिस्प्ले का प्रबंध किया था, 1976 की बात है। एक महीने में इतनी ज्यादा किताबें नहीं बिकी, तो मैंने प्रभा जी से कहा कि डिस्प्ले किया जब भी ज्यादा किताबें नहीं बिकी, तो प्रभा जी ने कहा मेरी किताबें बिकती हैं भक्तों के उत्साह के कारण। भक्तों में उत्साह रहता है, हमें दूसरों का उद्धार करना है, दूसरों को बचाना है, और दुकान में तो कोई परवाह नहीं करता। तो जब हम प्रचार के जाए हमें उत्साहित होना चाहिए। और कई साधन है प्रचार के, एक तो है 1-to-1, आप रेड लाइट्स में करते हो, सड़कों में करते हो, घर घर जाकर करते हो। और एक समय हमारा भक्त घर घर जा रहा था और जिस घर में पहुंचा वो आत्महत्या करने वाले थे, वो ठीक समय पहुंच गया। तो ये घर घर जाके भी कई बार बने। तो एक है घर घर जाना, मेरे आप फैक्ट्री में जा सकते हो, आपकी पुणे में नहीं थी फैक्ट्री में। अगर कोई कहे कि पिछले साल आप आए थे और हर साल नए लोग भी आते हैं, तो बचाव के अनेक साधन है। अगर हम यही सोचे कि हमने हमारे आचार्यों की इच्छा को पूरा करना है, परम भगवान की इच्छा को पूरा करना है, फिर सफलता प्राप्त होगी। तो पिछले साल भक्तों ने शहर मिलकर 1.5 लाख बड़े ग्रंथ बांटे थे, है ना। तो ये साल क्या है योजना, डबल है, 1.5 लाख का डबल कितना होता है। जब प्रभा जी ने मैराथन शुरू किया, प्रभा जी ने भक्तों को सराहा, उन्होंने एक स्लोगन दिया डबल है, मतलब कि पिछले साल अगर 2 किताब बांटी तो ये साल 4 हो गए थे। तो ये साल राधे श्याम प्रभु कह रहे थे कि योजना है 3 लाख किताब बांटने के लिए, 3 लाख बढ़ेगा। तो अगर आप सब जुड़ोगे तो अवश्य ही सब होगा प्राप्त कर सकते। तो इस श्लोक में ध्यान मुनि 3 विषयों पर बल दे रहे हैं, एक है दया प्रचार की सेवा, दूसरा है संतुष्ट हो जिस स्थिति में भी हो। भौतिक समाज में कोई संतुष्ट नहीं रहता, हर व्यक्ति सोचता है, इंग्लिश में कहते हैं ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और ये हरियाली ज्यादा अच्छी है। हर व्यक्ति सोचता है और प्राप्त करना चाहिए। नादमुनि कहते हैं भूखा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है भोजन खिला के, क्रोधित व्यक्ति भी संतुष्ट हो जाता है जब वो चिल्लाता है, प्यासा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसे पानी दो, पर लालची व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो आज का लोग लालची है, हमारा सिद्धांत सिंपल में नहीं थे, उनको और चाहिए और चाहिए। भगवान के कह रहे हैं संतुष्ट ही निकलो, जो भी प्राप्त हो उस स्थिति में संतुष्ट हो। ऊपर सनातन गोस्वामी एक समय बड़े प्रसिद्ध राजा के राजा का शासन कर रहे थे, जो वृंदावन उनके पास इतना धन था, रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी, पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। जो वृंदावन गए तो वहां मधुकरी करके रह रहे थे, रहने का कोई ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था, पर वो संतुष्ट थे। तो जो भक्त जो हरिनाम को स्वीकार करता है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। और अज्ञान व्यक्ति चाहे आप कितना भी उसे दो, उसे यही लगेगा थोड़ा कम है। जैसे भारत के जो धनी करोड़पति व्यक्ति है, अंबानी हो खो है, उनको क्या लगता है हजार कारखाने बस नहीं है, दस और कारखाने खोलने चाहिए, रोज नया धंधा शुरू करते रहे। आजकल लोग सो जैसे कह लो कि जियो के पीछे क्यों लोग लेते हैं, उसमें 1 करोड़ फिल्मी गाने हैं और हजारों फिल्मों को फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ये मौलिक समाज में इन चीजों के द्वारा कभी संतुष्ट नहीं होंगे। हरि नाम स्वीकार करोगे तो हर स्थिति में संतुष्ट होंगे। और सर्वेंद्रियों का मन बुद्धि इंद्रियों को वश में लाओ। तो मन बुद्धि इंद्रियों को वश में कैसे लाओगे, पापा जी कह रहे हैं इस श्लोक के रात्रि की समाप्ति में प्रभा जी कहते हैं, अगर आप सदा कृष्ण का चिंतन करोगे तो आपका मन भी बुद्धि भी वश में रहेगी। और ये संभव है भक्ति के विधि के पालन के द्वारा। तो नारद मुनि इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो भक्तों को कई बार कहता हूँ ये श्लोक कंठस्थ करो, और इसमें नारद मुनि प्रचार की विधि पर बल दे रहे हैं, संतुष्ट है और मन बुद्धि को वश में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए इन इंद्रियों को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। शास्त्र में अनेक उदाहरण है, वहां जो यात्री के पास 10,000 सालों की सुविधा थी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अंत में उनका निर्णय क्या था, मैं तो मूल व्यक्ति जाता था। सुबारी मुनि अनेक उदाहरण है जिनके द्वारा आप देखते हो कि इंद्रियों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। सर्वोपाधि मैंने बोलता आप भगवान की सेवा में उपयोग करोगे तो संतुष्ट कर पाओगे। तो संक्षेप में नारद मुनि हमें उपदेश दे रहे हैं यदि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ग्रंथों के विषय में आप मान लो 2 लाख 3 लाख ग्रंथ बांटोगे जनवरी में दिसंबर में, तो ये अर्थ नहीं कि 3 लाख नए भक्त अगले महीने आ जाएंगे। अगर 3 लाख नए भक्त नहीं आए तो हम कहे इसका क्या लाभ। जब आप इन ग्रंथों को बांटते हो कुछ पता नहीं कब इसका असर पड़ेगा। इसे प्रभु जी कहते हैं these bombs can explode at any time। मैं जानता हूं एक व्यक्ति जिसके घर में गीता खरीदी गई थी 10 साल पहले, 10 साल किसी ने गीता खोली भी नहीं। 10 साल के पश्चात एक दिन बेटे ने खोली गीता, बेटे ने गीता पढ़ना शुरू किया था। माता आप ही पढ़ो, बड़ा गहरा ज्ञान है इसमें। माता ने भी पढ़ना शुरू किया, पूरा खानदान भक्त बन गया। ऐसे हजारों कई उदाहरण है, किसी ने लंदन में गीता खरीदी और भक्त बना मेरे गांव में। आप पुनः ग्रंथ पढ़ते हो इसका प्रभाव किसी दूसरे को नहीं हो सकेगा। तो हम सबको उत्साहित होना चाहिए जिस प्रकार भौतिक वाले उत्साहित होते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारे मन में ये उत्साह होना चाहिए भगवान के प्रचार के लिए। तो आप सब मैराथन में उत्साह से जुड़ोगे, अपमान हुआ तो मुझसे पूरा नहीं मानोगे, कोई आपका अपमान करे नितिन सोच लेना, कोई उनका अपमान कर सकता है तो हमारी क्या स्थिति रहेगा, हम तो जूते भी खा सकते हैं। हमारे भक्त आपके भारत में तो इस समय बड़ा अच्छा मौसम है, और विदेशों में इतनी सर्दी है, बर्फ है, और कई देशों में सरकार के इतने कड़क नियम है, जैसे एक देश है कजाकिस्तान है मुसलमान देश, वहां इतनी ठंड है, हमारे भक्त जब भी प्रचार किए जाते हैं कोई ना कोई रोज पकड़ा जाता है, जब भी वो प्रचार कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी की इच्छा थी पतितों का उद्धार हो, और अगर आज भक्तों की संख्या बढ़ रही है पूरे विश्व में उसका मूल कारण है उन ग्रंथों का प्रभाव। हमने इन ग्रंथों को केवल बांटना ही नहीं, इन ग्रंथों को पढ़ना भी है, और पढ़ेंगे तो बुद्धि तेज होगी, बांटेंगे तो पतितों का उद्धार होगा। तो आप सब मैराथन में जुड़िए उत्साह के साथ, प्रयास कीजिए तीन लाख गीता बांटने के लिए, अब अंदाजा लगाओ 3 लाख बड़े ग्रंथ बांट रखे तो कितने लोगों का उद्धार होगा, और कुछ पता नहीं ग्रंथों को कब पढ़ा जाए। तो इन ग्रंथ में इतनी शक्ति है कि पतितों का उद्धार हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु के अधर आदेश के अनुसार चैतन्य नंदा हरिदास घर घर जा रहे थे, और घर घर जाने के दौरान किसे मिले, जगाए मनाए। आज देखा जाए लगभग सब जगह जगाए मनाई है, भारत में हर शराब की दुकान के सामने कितनी भीड़ होती है, लेकिन तो हमने जगाए मनाई का उदाहरण प्रभुपाद ने वही किया ना, जगाए मनाई का उदाहरण, तो हमें भी वही भाव को अनुकूल करना है। उत्साह से जुड़ोगे सर, सब जुड़ोगे उत्साह से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट gkgoswami.com।